राधा माधवा कुंज बिहारी, जया राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, सब लोग बोले जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय रामानंद प्राण धन हे श्रील श्यामानंद प्राण धन हे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। त्रिला जीव गोस्वामी प्राण धन हे। त्रिला जीव गोस्वामी प्राण धन हे। జయ రాధా గోకుల నంద రాధా గోకుల నంద రాధే జయ రాధా రామన రాధా రామన రాధే జయ రాధా మదన్ మోహన్ రాధా మదన్ మోహన్ రాధే జయ రాధా గోవింద రాధా గోవింద రాధే జయ రాధా గోపీనాథ రాధా గోపీనాథ రాధే జయ రాధా కుండ శ్యామ కుండ గిరి గోవర్ధ రాధా కుండ శ్యామ కుండ గిరి గోవర్ధ జయ రాధా కుండ శ్యామ కుండ గిరి గోవర్ధ రాధా కుండ శ్యామ కుండ గిరి గోవర్ధ జయ వృందావన ధామ్ జయ వృందావన ధామ్ వృందావన ధామ్ జయ వృందావన ధామ్ జయ విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టోత్తర శత శేషు డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీ ప్రభుపాద కీ జయ విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టోత్తర శత శేషు డివైన్ గ్రేస్ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి శ్రీ ప్రభుపాద కీ జయ అనంత కోటి వైష్ణవృంద కీ జయ నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కీ జయ ప్రేమ్ సె కహో శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శివాసాది గౌరభక్తవృంద కీ జయ ఇసి రాధాకృష్ణ గోప గోపీనాథ శ్యామకుండ రాధాకుండ గిరి గోవర్ధన్ కి జయ బ్రంజమిశ్రీ వృందావన్ ధామ్ కి జయ మథురా దుర్గపురి ధామ్ కి జయ పురుషోత్తమ శత్రు జగన్నాథ్పురి ధామ్ కి జయ గంగామయ యమునామాయ కి జయ కృష్ణ ముక్తి ప్రదాయని శ్రీమతి తులసి మహారాణి కి జయ హరే కృష్ణ మహామంత్ర కి జయ కలియుగ పావన హరినామ సంకీర్తన కి జయ నితాయ గౌర ప్రేమానందే హరి హరి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానంజనశలాకయ చక్షుర్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైంశవాంశ చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణరఘునాథ నిత్యం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సగణలలితా శ్రీ విశాఖా నిత్యం స హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియ జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శివ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ తో ఆప్ సభీ లోకో ఆజ్ కా జో పవిత్ర దివస్ హై యహాన్ పర్ ఆప్ లోకో స్వాగత్ హై ఆజ్ బహుత్ సారే ఏక్ సాథ్ జో కి ऐसा पवित्र दिवस है कि बहुत सारे आचार्य लोग का आज आविर्भाव दिवस है। श्यामानंद पंडित और राधा कुंड का भी अपीयरेंस डे आज, और हमारा वृंदावन विहारी का अपीयरेंस डे है तिथि के हिसाब से। और आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का भी आविर्भाव दिवस है। तो इसी प्रकार से आज बहुत बड़ा पुण्य दिवस है। तो आज हम श्यामानंद पंडित के बारे में और राधा कुंड अपीयरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले श्यामानंद पंडित के बारे में चर्चा करेंगे। अब सभी लोगों को पता है कि जो वृंदावन में जो सेवन गोस्वामी टेम्पल्स है उसमें प्रमुख है कि राधा श्याम सुंदर मंदिर है। भले से षड गोस्वामी में से श्यामानंद पंडित अलग है, लेकिन इनको गोस्वामी टेम्पल में गिना जाता है। श्यामानंद पंडित ब्रह्माधव गौड़ीय गुरुशिष्य परंपरा में कैसा आचार्य थे, जो खास करके श्रीमती राधारानी की कृपा प्राप्त हुए थे। और सभी गोस्वामी लोग भी पता था कि उस टाइम पे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्रकट भी थे, उनको भी श्यामानंद पंडित के बारे में पता है। नहीं सॉरी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चले गए थे, उनका प्रकट हो गया था, लेकिन उस टाइम पे जीव गोस्वामी थे। और जीव गोस्वामी जब श्यामानंद पंडित के ऊपर जो श्रीमती राधारानी का स्पेशल कृपा प्राप्त हुई थी, वो इतना आनंद उल्लास में अपना नृत्य करने लगे, आप समझ नहीं सकते उनका किस प्रकार से मतलब कि अष्टसात्विक विकार भाव आई थी। और जैसे ही राधारानी का कृपा प्राप्त हुई, तुरंत उन्हें नृत्य करने लगे, बोले धन्य हो। तो हम आज उनकी जीवन चरित्र के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। श्यामानंद पंडित, उनकी जन्म उड़ीसा का एक गांव है, सॉरी उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, वो गांव का नाम है धारेन्द्र बहादुरपुर। वहां पर उनका आविर्भाव हुई थी 1535 में। और उनका पिता का नाम था श्री कृष्ण मंडल, और उनका माता का नाम था श्री दूरिका। और श्री कृष्ण मंडल और दूरिका, उन्होंने बहुत पुत्र और पुत्री को जन्म दिए थे, लेकिन कोई भी पुत्र और पुत्री ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। लेकिन जब श्यामानंद पंडित का जन्म हुए, तो सभी गांव लोगों ने सोचा कि अभी ये भी जमराज की कटाक्ष दृष्टि से शायद ये भी जीवित नहीं रहेंगे। तो जान पूछ कर बोले कि अभी इनके लिए अच्छा नाम देने का क्या प्रयोजन है, अभी जो भी हम अच्छा नाम देते हैं कोई तो जीवित रहते नहीं है। तो इसलिए इनका नाम रख दिया क्या है, दुखी। चलो बेचारा पता नहीं, वो भी रो रो के आया है, रो रो के भी हमको भी रुला करके जाएगा, इसलिए हम इसके ऊपर कोई अभी आसक्त नहीं रहेंगे। तो गांव वाला पूरा विरक्त आ गए थे, बोला कि ठीक है बेटा तो हुआ है, फिर उनका नाम दे दिया दुखी। लेकिन जैसे ही बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे और उनकी जो अंग कांति, उनकी जो क्या बोलते इसको, उनकी जो शांत स्वरूप है और उनका जो गुण धीरे धीरे सभी लोग को आकर्षित करने लगे, सबकी और उनका आकर्षण बढ़ते गया। और श्यामानंद दुखी जिस तरह से थोड़े 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 बढ़ने लगे, तो उनका बचपन में कोई ऐसा जो साधारण बालक खेल कूद में मस्ती करते हैं ये करते हैं, उनका कोई उसमें स्वभाव नहीं था, शांत सौम्य सरल, और पूरा सभी जितना भी देवता के जो गुण है उनके प्रति उनके ऊपर आने लगा। तो इसी प्रकार से तो धीरे धीरे 5 साल की जब उम्र हुई, पढ़ाई करने का उम्र हुई, तो उनका पिता माता लगे सोचने लगे कि अभी इनका पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो कोई बच्चे पढ़ने के लिए भी इतना उम्र हुआ नहीं, सब 3-4 मैक्सिमम कोई 4 साल के अंदर सब गुजर चुके थे। लेकिन जब इनका थोड़ा उम्र हुई तो पितामह सोचने लगे भी उनको पढ़ाना चाहिए अभी, क्योंकि पितामह तो पूरा इनके ऊपर विरक्त थे कि पता नहीं कब इनका यमदृष्टि कृपा आ जाएगी, तो इसलिए कोई आकर्षण उनके ऊपर नहीं था। लेकिन उनका गुण स्वरूप सबको धीरे धीरे आकर्षित करने लगा। उसके पश्चात उन्होंने जो छोटा सा उनका गांव में जो विद्यालय थे, ग्रामर पढ़ने के लिए छोड़ दिया। पहले जो संस्कृत जो ग्रामर है, ग्रामर पढ़ाया गया उनको। वो ग्रामर में इतना प्रवीण हो गए, इतना विद्वान हो गए, सभी बालक से वो तेज स्मृति वाले थे। जो भी एक बार देखते थे, सुनते थे, उसको पूरा याद कर लेते थे। ऐसे ऐसे धीरे 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 उनका पढ़ाई आगे बढ़ने लगा। लेकिन उनका पढ़ाई में जितना रुचि था, उससे ज्यादा उनको रुचि था किसके ऊपर? ना आध्यात्मिक के ऊपर, कृष्ण भक्ति के ऊपर, ज्यादा रिचुअलिस्टिक के ऊपर ज्यादा विश्वास करने लगे, श्रद्धा आने लगा उनको। फिर उनका ज्यादा आध्यात्मिक और दृष्टि आ करके उनका पिता माता बड़ी प्रसन्न हुए, क्योंकि इनका पिता माता भक्त थे, कृष्ण भक्ति कर रहे थे, पूरा कृष्ण के शरणों में पूरा शरणागत थे। तो उनकी आध्यात्मिक के ऊपर रुचि देख करके उनका पिता माता को लगा कि अभी इनको शास्त्र के बारे में ज्यादा अध्ययन करवाना चाहिए। तो उनको फिर ज्यादा शास्त्रों के बारे में उनका अध्ययन करने लगे। तो बड़ी कम उम्र में, 10 साल या 12 साल की उम्र में वो सारे शास्त्रों का जो सिद्धांत है उसने वो समझ गए। उनको ये समझ में आया कि सारे शास्त्रों का सिद्धांत है कि हम बद्ध जीव ये संसार में माया के पंजाल में हम पूरा, बल्कि यू आर एंटैंगल्ड इन द मेटल वर्ल्ड। हम अपना कितना भी कोशिश करेंगे, हम अपने आप इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमें किसी प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु से हम इस संसार की भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। इतना कम उम्र में खुद शास्त्र पढ़ करके समझ गए। हम लोग भक्ति में आने के बाद भी वो चीज कभी समझ नहीं पाते, भक्तों के संग में रहने के बावजूद भी कभी समझ नहीं पाते। और उनका बचपन में एक खास गुण था कि असत संग, कभी जो दुष्ट प्रकृति के जो लोग हैं, जो यो बालक है, उनके साथ कभी भी संग नहीं करते थे। जो भाई वैष्णव का एक सबसे अच्छा गुण हो कि असत संग यही वैष्णव आचार, कि जहां पर वो कुसंग है वो हमेशा दूर रहते हैं। तो ये दुखी का बहुत बड़ा वैष्णव के गुण थे। कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करे, कुछ कुसंग कर रहे, उसकी संग थोड़ी सी भी दूर नहीं जाते थे। तो उनके मन में जब इच्छा हुई कि मुझे गुरु स्वीकार करना चाहिए, तब धीरे धीरे वहां पर उनके गांव में उनके जो आजू बाजू में जो लोग जो शास्त्र के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो उनको समझ में आया कि गौर नित्यानंद वो है, भगवान है, जो कि भक्त के रूप में आकर लीला कर रहे हैं। उनके बारे में थोड़ी बहुत उन्होंने कथा प्रसंग सुनी रखी थी गांव के लोगों से, अलग अलग विद्वान लोगों से। तो उनको गौर नित्यानंद के प्रति बड़ी आकृष्ट हो गए और उन्होंने सोचने लगे कि गौर नित्यानंद का ऐसा कोई निज पार्षद है क्या, नित्य संगी है क्या? तो उनको लगा कि अभी उनके जो पार्षद थे गौरीदास पंडित, गौरीदास पंडित के एक शिष्य है हृदय चैतन्य। उन हृदय चैतन्य के बारे में वो बहुत कुछ सुने रखे थे कि वो गौरीदास पंडित के प्रमुख शिष्य है। तो उनको जब हृदय चैतन्य के बारे में उन्हें सुनने लगे कि अच्छा गुरु है जो कि पूरा भगवान की नित्य लीला दर्शन करते हैं, बहुत बारे उनके बारे सुन के रखे थे, तो उनमें मन में तय कर लिए कि मुझे अगर किसी गुरु का शरण लेना है तो मुझे हृदय चैतन्य से दीक्षा लेना है। तो उसका निश्चय देख करके उनका पिता माता बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारा बच्चा वो गुरु भी बहुत अच्छा चुन लिया, हृदय चैतन्य बहुत बड़ा भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो हृदय तन कहाँ पर रहते थे? अंबिका कालना, जो कि ये ओडिशा से अंबिका कालना बंगाल का बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर है। तो जब उन्होंने इच्छा प्रकट की मुझे जाकर के हृदय तन से दीक्षा प्राप्त करना है, तो उनके पिता माता को लगा कि यार ये छोटा बच्चा अभी इतना दूर कहाँ से कैसे जाएगा। तो थोड़ा बोले कि ठीक है, तुम जब बड़ा हो जाओगे जाओगे, बड़ा हो जाओ जाओगे, ऐसा करके टाल रहे थे उनको। लेकिन उनके मन में इतना इच्छा जागृत प्रकट हो गई, बोले कि नहीं मुझे अभी का अभी निकलना है। तो एक बार ऐसे रात को तुरंत किसको बिना बताए वो सुबह सुबह निकल गए, और रेगुलर रास्ता में नहीं गए, एक अलग जो कि कोई पहचान नहीं पाएगा उसी रास्ते से पकड़ करके वो अंबिका कालना की ओर चले गए। और वो गुरु के पास आ गए, उन्होंने पता लगा कि उस टाइम पे उनका जो गुरु हृदय चैतन्य एक कुटीर बनाकर वहाँ पर भजन कर रहे हैं। जो देश जैसे ही दुखी अंबिका कालना पहुँच रहे अपने गुरु के पास पहुँच गए, गुरु हृदय चैतन्य दुखी दुखी को देख करके ही उनको लगा कि ये बहुत बड़ा ही साधु है। तुरंत दर्शन मात्र से कि जो गुणी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो दूसरे को देख करके समझ सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या है। जैसे कि सोना रे, वो कितना भी मिश्रण हो सोने में, वो तुरंत सोना है कि नकली है तुरंत तुरंत पहचान लेते हैं। तो उसी प्रकार जो साधु है वो दूसरे साधु को तुरंत पहचान लेते हैं। तो बोले कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत उनको आलिंगन किए, बोले कि आइए हमारे कुटिया में। तो दुखी ने बोले कि मैं आपके पास आए हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बोले कि ठीक है, अब रुकिए यहाँ पर। तो उन्होंने गुरु ने उनको एक सेवा दिए थे कि पहले कोई शिष्य गुरु के आश्रम में आते हैं, पहला क्या है कि सेवा, कि बिना सेवा से शुद्धिकरण नहीं होगा, बिना नम्रता से दीक्षा प्राप्त नहीं होगी, पहले उसी व्यक्ति के अंदर नम्रता आना चाहिए। तो नम्र है कि नहीं, शुद्धता है कि नहीं, वो परीक्षा के लिए उनको एक सेवा दे, क्या कि गौर नित्यानंद का जो विग्रह का जो फूल का गार्डन है वहां का देखभाल करने के लिए, कि आप यहां पर फूल उगा करके भगवान को ऑफर होना चाहिए, आप उसका फूल का टेक केयर कीजिए। तो वहां पर ऐसा नहीं कि चलो फूल का बगीचा में पानी देना है तो हम लोग टैप खोल दो यार, पानी सप्लाई कर दो, स्प्रिंकल लगा दो, ऑटोमेटिक पानी चालू हो जाएगा, ऐसा सुविधा था नहीं। तो कई दूर से कुआ से पानी निकल के ला करके मटका में फिर उसको सर के ऊपर लेकर आके फूलों को देना पड़ेगा। तो ऐसे दिन में कितना कितना मटका भर भर के वो लेकर आकर के बहुत अच्छा सेवा पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, फूल का ध्यान दे रहे थे। लेकिन इतना मेहनत था कि वो सर के ऊपर छोटा बालक है, मटका को उठा करके ला कर फूलों की झाड़ियों में इतना पानी देना संभव नहीं है। उनका सर पे क्या हो गया, घाव हो गया पूरा, और घाव हो के उसमें कीड़ा चलने लगा, लेकिन इनको थोड़ा सा विचलित नहीं हुए, वो अपने शरीर के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते दुखी। एक बार उनका सेवा देख करके बोला कि इतना कैसे मेहनत कर रहा है, और अचानक ऐसे ही और गुरु को उनको बुलाए कि दुखी इधर थोड़ा आओ। देखिए पूरा घर से जब आया था तो हट्टा कट्टा होकर आया था, अभी तो थोड़ा पतला हो गया। तो गुरु समझ गए कि बड़ी मेहनत है, उसका नम्रता भी है, कोई भी सेवा तो भले से पंडित है उसको है, इतना ग्रामर में स्कॉलर है, सब कुछ है, लेकिन उसको नम्रता है। तो उसका गुण देखकर फिर वहाँ क्या हुआ कि जब भी उन्होंने सर झुका करके उनको गुरु को दंडवत किए, जब गुरु ने बुलाया तो उनके कीड़ा जो है वो गुरु के सामने गिरने लगा, और गुरु देखकर आश्चर्य हो गए, अरे ये तो घाव होकर कीड़ा आ रहा है इसमें, तुम उसको कैसे टॉलरेट कर रहे हो, कैसे सहन कर रहे हो। तो गुरु के हृदय भी पिघल गया, बोले कि सामान्य नहीं है। तुरंत उनका दुख दूर करने, पीड़ा दूर करने के लिए क्या किया, उन्होंने हस्तकमल को अपने शिष्य के सर पर रख दिए, और तुरंत घाव जो कीड़ा सब अदृश्य हो गए, और पूरा जो उनका क्षत स्थान है वो पूरी तरह से क्योर हो गया, क्योंकि वो तो दिव्य स्तर की है जो हृदय चैतन्य है। तो इसी तरह से पूर्ण तरह जब शुद्ध हो गए तो उसी दिन ही बोले कि आज मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ और आज से तुम्हारा नाम है दुखी कृष्ण दास। तो उनका नामकरण क्या हुआ दुखी से? दुखी कृष्ण दास। तो फिर उनको फिर अलग अलग सेवा में फिर नियुक्त किए। फिर बाद में बोले कि नहीं, अभी ये जो व्यक्ति है, ये जो शिष्य है मेरा, ये शास्त्र में बहुत बड़ा पारंगम है, शास्त्र को उसको बहुत स्मृति है, तो इसको और क्यों पढ़ाया नहीं जाए। तो उन्होंने सोचा कि अभी वृंदावन में श्रील जीव गोस्वामी का शास्त्र की जो यूनिवर्सिटी चल रहा है, जीव गोस्वामी बहुत बड़ा शास्त्र में विद्वान है, तो उन्होंने जीव गोस्वामी के पास उनका अपने शिष्य को भेज दिया कि आप जाओ वृंदावन में, जीव गोस्वामी के अंडर आप शास्त्र की शिक्षा करो। तो तुरंत दुखी कृष्णदास वृंदावन की ओर निकल गए। फिर वृंदावन में आकर के अलग अलग मथुरा के दर्शन किए। फिर उनका बड़ा डिस्क्रिप्शन है, उनका श्यामानंद पंडित के चरित्र का एक बुक है, उसमें कई कई जगह उन्होंने कैसे कैसे दर्शन करके गए पूरा वर्णन है उसमें, बरसाना ये हो करके फिर लास्ट में गोवर्धन में आते हैं, फिर गोवर्धन से फिर वृंदावन आते हैं, वृंदावन में जीव गोस्वामी से मिलते हैं। और जीव गोस्वामी को खबर मिल चुका था कि हृदय चैतन्य ने अपने शिष्य को भेजा है मेरे पास, तो उन्होंने जैसे समझे कि ये बहुत बड़ा विद्वान भी है और नम्रता भी है, तो तुरंत उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किए और उनका पढ़ाई का ध्यान दिए। तो उसी वक्त बंगाल से और दो शिष्य आए थे अलग अलग गुरु के, एक नरोत्तम दास ठाकुर हैं और एक है श्रीनिवास आचार्य हैं। तो तीनों मिल करके नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, ये तीनों, सॉरी श्यामानंद पंडित नहीं है, दुखी कृष्णदास है, उनके बाद में श्यामानंद पंडित होता है, तो दुखी कृष्णदास, ये तीनों आकर के किसके पास रहते हैं? जीव गोस्वामी के पास। फिर जीव गोस्वामी उनको अलग अलग शास्त्रों की जो सर संदर्भ है उनके बारे में उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो उनकी शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा में तो बहुत पारंगम हो गए थे शास्त्रों में, लेकिन एक बार श्यामानंद पंडित, सॉरी दुखी कृष्णदास जा करके गुरु से, जीव गोस्वामी से विनती करते हैं कि मुझे कोई स्पेशल सेवा दे सकते हैं। तो बोले कि हाँ क्यों नहीं। तो तुरंत जीव गोस्वामी के मन में आया कि ये राधा रानी के बहुत प्रिय जैसे मुझे लग रहा है। जीव गोस्वामी को पहले से थोड़ा पता चल गया था ये राधा रानी के स्पेशल कृपा प्राप्त है, तो इनको राधा रानी के जैसा कुछ सेवा देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो राधा रानी के जो सेवा कुंज है, सेवा कुंज एरिया में उनको झाड़ू मारने की सेवा दिया कि आप हर रोज इस सेवा कुंज में आप झाड़ू लगाइए। तो ये सेवा सुन करके तुरंत दुखी कृष्ण तो बहुत आनंद उल्लास हो गए, बोले कि बहुत अच्छा सेवा मिला मुझे, ऐसा सोच कभी सोचे नहीं, अरे मेरे को झाड़ू मारने का सेवा दे रहे हैं। कि भगवत सेवा में कोई भी सेवा हो, झाड़ू मारो या तो फिर मंदिर मैनेजमेंट करो, सब एक ही जैसे हैं। और हम डिफरेंस लगाएंगे तो हमारा जो मति बुद्धि से फिर हमारा स्पिरिचुअल प्रगति नहीं होगा। हाँ भले से अपना अपना बुद्धि के हिसाब से अपना अपना सेवा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कभी डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए हमें, कभी अंतर नहीं करना चाहिए, ये बड़ा है और ये छोटा है सेवा है, सेवा एक ही है। तो तुरंत श्यामानंद, सॉरी दुखी कृष्णदास अपना गुरु की श्रीमुख से जैसे आदेश मिला, तुरंत अगले दिन ही हर रोज सूर्योदय से पहले पूरा जो सेवा कुंज के जो एरिया है वो पूरा उसको क्लीन करने लगे। सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए सेवा कुंज में जो दर्शन के लिए आते हैं लोग, जो भक्त लोग आते हैं उनकी सुविधा के लिए कोई काटा ना घुसे उनके पैरों में, तो उसी तरह से क्लीन करते रहते थे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक। इसे बहुत बार सेवा करने के बाद उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के श्रीमती राधा रानी बोले कि अरे वाह कितना तुच्छ सेवा कर रहे हैं। तो तुरंत राधा रानी एक लीला, उनको कृपा स्पेशल देने के लिए उन्होंने के लीला रचाई। तो राधा रानी जान पूछ करके एक रात को उन्होंने जब हर रोज तो सेवा कुंज में रास नृत्य होता है और नाच नृत्य के दौरान एक बार राधा रानी जान पूछ करके अपना जो पैरों के जो नुपुर हैं वो छोड़ के चले गए और ललिता देवी को बोले कि आप जा करके ढूंढो। जानबूझ कर राधा रानी ने खो करके गए थे और ललिता देवी को आदेश दिए कि आप जाकर मेरे कल रात को हमने कहीं तो उसका भूल गए नूपुर, आप जाकर इसको ढूंढ करके लेकर के आइए। तो ललिता देवी हाँ जब उसके परंत क्या हुआ कि दुखी कृष्ण जब इधर झाड़ू मार रहे थे तो तुरंत झाड़ू मारते मारते उनको जो इंद्र नीलमणि जो बोलते हैं इसको इंद्र नीलमणि सुवर्ण नूपुर जिससे उनका जो प्रकाश उनके ऊपर आया तो बोले कि क्या है, तुरंत उसको जाकर स्पर्श करते हैं और उसको उठाते हैं, उठा करके अपने जैसे ही शरीर में स्पर्श करते हैं तुरंत उनके अंदर राधा रानी की स्मृति होती है, तुरंत वहां पर राधे 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 करके चिल्ला करके वहां पर मूर्छित हो जाते हैं, अष्ट सात्विक विकार उनको आते हैं और फिर बाद में मूर्छित जब उनको होश आता है तो बोलते कि ये कोई साधारण नूपुर नहीं है, ये किसी मर्त्य लोग किसी नारी का स्त्री का ये नूपुर नहीं है, ये स्वयं श्रीमती राधा रानी का ही नूपुर है, क्योंकि जिनका स्पर्श है राधा रानी की स्मृति आती है। तो तुरंत एक आकाशवाणी जैसा हुई कि ये जो नूपुर है बहुत पवित्र चीज है, बहुत क्या बोलते हैं सेक्रेड है, सेक्रेड क्या हिंदी में बोलेंगे डिवाइन है, तो आप इसको संभाल के रखिए, इसको आप संभाल के रखिए। तो तुरंत श्यामानंद सॉरी दुखी कृष्णदास उसको एक कपड़े में लपट कर उसको रख देते हैं। फिर बाद में वहीं पर राधा रानी ललिता देवी को निर्देश करते कि आप जाइए, मेरा नूपुर कहीं खो गया है, अब ढूंढ करके लेकर आइए। तो ललिता देवी एक वृद्धा जो ओल्ड वुमेन उनके रूप धारण करके उसी कुंज में आते हैं और कुंज में तभी उन्होंने झाड़ू मारते रहे हैं तो उनके दर्शन होते दुखी कृष्णदास के, तो उनको पूछते हैं उस वृद्धा स्त्री ने कि आपको कोई एक नूपुर मिला है क्या, तो बोले कि हाँ मिला है। वो बोले कि एक्चुअली क्या हुआ कि कल शाम के टाइम पे मेरा जो वधू है वो यमुना में पानी लेने के लिए आए थे और यहाँ पर थोड़ा अच्छा फूल सेवा कुंज में थोड़ा अच्छा फूल की देखी तो तुरंत इस तरफ आके फूल तोड़ने के लिए आए थे, जैसे फूल तोड़ रहे थे तो तुरंत एक बाघ ने उसको लगी, तुरंत उसके एक बाघ उसी के सामने आ गया और मेरा बहू जो है भयभीत हो करके वो भागने लगा यहाँ से और भागते टाइम उसका चरणों से उसका नूपुर गिर गए हैं, आप कृपया मुझे उसी नूपुर को वापस कर दीजिए। तो तुरंत कृष्णदास ने बोले कि ये किसी जो नूपुर मुझे मिला है ये किसी साधारण औरत का नूपुर नहीं है, ये किसी साधारण नारी की नूपुर नहीं है, ये कि अलौकिक है, क्योंकि उसका स्पर्श करते ही मुझे श्रीमती राधा रानी की स्मृति आया और आप जिस वेश में आए हैं आप तो एक वृद्धा और आप अब वृद्धा ब्राह्मणी भी है और आपका जो शरीर है पूरी तरह से मतलब कि वृद्ध हो चुके हैं और आप दरिद्र भी जैसे देख रहे हैं, आपके ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कोई धनवान वाले हैं और आपकी बहू जो है आप भी इसके जैसे रहेंगे ना, कितना धन रहेगा, आप अगर इसी परिवार में हैं तो आपका बहू भी उसी परिवार के रहेंगे तो उनके पास कोई धन नहीं रहेगा, फिर तो किसी दारिद्र व्यक्ति का पास इतना कीमती वाला नूपुर कैसे आ सकता है, आप बताइए। ये सुवर्ण नूपुर है इंद्र नीलमणि जिसमें हीरा लीला सब भरा हुआ है और सुवर्ण से जिसके प्रकाश आती है, वो ऐसा नूपुर किसी गरीब व्यक्ति के पास तो नहीं रहेगा और ये किसी साधारण नारी का भी नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि आपका ही बहू का है तो आप उसे
प्रमाण देना पड़ेगा। आप अपने बहू को यहां पर मेरे सम्मुख बुला करके लेकर के आइए और उनका मैं पैर चेक करूंगा। और आप बोल रहे कि एक ही गिर गया है, इसका मतलब है कि उसका दूसरा पैर में एक रहेगा। और प्रमाण है कि अगर एक ही गिर गया तो दूसरा तो रहेगा ना। आप उनका दूसरे पैर में देखूंगा, अगर दूसरे पैर में ऐसा चीज है तो ये उनका ही है, मैं उनको दे दूंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आप बुला करके लेके आइए। तो तुरंत जो वृद्धा, जो कि ललिता देवी वृद्धा के वृद्धा नारी के रूप में आई थी, प्रकट हुए थे वहां पर, वो जैसे श्यामन पंडित के इतना आर्गुमेंट सुना, बोले कि इनसे हम जीत नहीं सकते अभी। तो तुरंत उन्होंने बोले कि आप सही बोले कि ये किसी बहू का नहीं है। तो तुरंत उन्होंने बोले कि जिसका है मैं उनको बुला करके लेकर आता हूँ। तो उन्होंने चले गए फिर, और राधा रानी को ये सब जाके बताया उन्होंने कैसा ऐसा है। श्यामन दुखी कृष्णदास बोल रहे कि वो जिसका है, जिसका खो गया है उनको ही देंगे, तो आपको ही आना पड़ेगा अभी। तो राधा रानी, ललिता, विशाखा ये सब मिल करके आते हैं कृष्णदास के पास। और कृष्णदास लेकिन ललिता देवी जिस वृद्धावस्था में आए थे उसी वृद्धावस्था में, लेकिन ये छोटी बालिका के रूप में आए थे। और श्यामानंद पंडित के पास, कृष्णदास के पास सम्मुख में खड़े रहे और बोले कि इनका ही नुपुर है। तो जैसे ही कृष्णदास उसी बाली को दर्शन करते हैं, वो श्रीमती राधा रानी और विशाखा देवी वो भले से छोटे बालिका के रूप में आए थे, लेकिन अपने आप को छुपा नहीं पाए। तुरंत उन्होंने श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट हो गए। तब तक उससे पहले, क्योंकि ये श्यामानंद पंडित कृष्णदास जो है उनको देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए तुरंत ललिता देवी उनको क्या किए। एक्चुअली इसमें इसका क्या है, इसका बहुत सारे वर्जन है। कोई कोई बोलते हैं कि ललिता देवी उनको लेकर के जाते हैं किशोरी कुंड में, उनको स्नान करवाते तब भी उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होते हैं और उनको दर्शन करते राधा रानी को। कोई कोई बोलते हैं कि राधा रानी उनके ऊपर इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि बोलते हैं कि आपके सम्मुख में जो खड़ा हो, आप एक छोटा बालिका के रूप में देख रहे हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, आप मुझे दर्शन करना चाहते हो तो मेरे कुंड में आप स्नान करो, ये मेरा राधा कुंड है, आप उसमें स्नान करो, आप मेरे को पहचान पाओगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग वर्जन है, मैं बहुत सारे इसमें देखा, अलग अलग किताब में अलग अलग वर्जन लिखा हुआ है, तो सब सही है ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो। लेकिन राधा रानी फिर उनको अपने जो दिव्य स्वरूप है उनको दर्शन देते हैं। दुखी कृष्णदास जैसे ही राधा रानी का दर्शन करते हैं तो तुरंत मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छित होकर यहीं गिर पड़ते हैं। फिर बाद में बोलते कि कृष्णदास आपकी सेवा में बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपके सम्मुख में प्रकट हुआ हूँ, आप मुझे अपने स्वहस्त से, सॉरी यहां पर क्या होता है कि वहां पर एक्चुअली दो वर्जन है इसमें। दुखी कृष्णदास को क्या करते हैं कि तुरंत वहां से उनको इस भवो वृंदावन से उनको तुरंत अपना स्वधाम में ले जाते हैं। और फिर श्रीमती राधा रानी बोलते हैं कि आप स्वयं अपने हस्तों से मुझे अपना जो नुपुर खो गया है उस नुपुर को मुझे पहना हो, क्योंकि उसका उनका जो ओरिजिनल रूप है आध्यात्म जगत में वो कनक मंजरी है, कनक मंजरी। कुछ श्रीमती राधा रानी स्वयं उनसे सेवा लेना चाहते थे, बोले कि आप अपने हस्तों से इन नुपुर को पहनाओ। लेकिन कुछ मतलब कि जो टीकाकार बोलते हैं कि नहीं नहीं, उनको यहाँ पर उन्होंने दर्शन दिया है इस भौम वृंदावन में, तो बोलते हैं कि मैं आपको अभी अपना स्वरूप यहीं पर देता हूँ, आप मुझे पहनाओ करके। तो दोनों सही है, या यहाँ पर हो या वहाँ पर हो, नित्य लीला तो है, इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है साइमन ऋषि। तो फिर तो दुखी कृष्ण जैसे जाकर के श्रीमती राधा रानी के दूसरा पैर को नूपुर लगाते हैं, तो तुरंत राधा रानी खुश हो जाते हैं और और पैरों से फिर अपने हाथों से फिर उसी दूसरे ऊपर को निकाल करके तुरंत श्यामानंद पंडित सॉरी कृष्णदास के जो मस्तक पर उनको स्पर्श कर देते हैं, और स्पर्श करने से उनको पूरा उनकी जो राधा रानी की जो चरण कमल की चिन्ह आ जाते हैं। तो वहां पर क्या है, राधा रानी की जो सॉरी कृष्णदास के माथे पर एक तिलक के रूप में, परमानेंट तिलक के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं। एक तो पहले आपको बताता हूं, एक तो उनको राधा रानी की कृपा से नूपुर प्राप्त हुई, फिर उसके नूपुर से उनकी तिलक बनी। फिर श्रीमती राधा रानी बोलते हैं कि आप मुझे इतना प्रसन्न किया है तो इसलिए मैं आपको मेरा जो प्राण है श्याम सुंदर है उनकी विग्रह में आपको देता हूं। तो उन्होंने अपने हृदय से अपने श्याम सुंदर विग्रह को प्रकट करवाते हैं और फिर बात मिलते कि श्यामानंद आप इसको लीजिए। ये भौतिक जगत की लीला है, मतलब कि इस भौम वृंदावन की लीला है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की लीला के हिसाब से तो जब कनक मंजरी वहां पर इस भौतिक जगत से फिर वो अपना शरीर छोड़ करके श्यामानंद पंडित जाते चले जाते आध्यात्मिक जगत में कनक मंजरी के रूप में, तो कनक मंजरी बाकी सब मंजरी मिलकर के वहां पर इतना आनंद प्रदान होता है, अलग अलग लीला होते रहते हैं। तो फिर बाद में लीला खत्म होने के बाद फिर बोलते हैं कि आप जाओ अभी मर्त्यमंडल में, अपना जो कर्तव्य है उसको पालन करो। तो कनक मंजरी रोते बोलते कि इतना 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 आनंद है, ये सब छोड़ कर कौन क्यों जाएंगे, मैं अब मेरे को क्यों इतना सजा दे रहे हो। तो फिर रोने लगे, तो श्रीमती राधा रानी बताते हैं कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेरा विरह से आपको कुछ लगेगा नहीं, मैं अपना जो प्राण विग्रह है उनको आप मैं देता हूं, आप उनकी सेवा पूजा करेंगे तो आप वहीं पर भी उसी सेम नृत्य आनंद का महसूस कर सकता है। मर्त्यमंडल में रहते हुए भी अपना कर्तव्य को पालन करते हुए भी जब शिव विग्रह की आराधना करोगे तब उसी जिस प्रकार से हम प्रेम लीला में यहाँ पर जो आनंद ले रहे वो आनंद आप वहीं पर भी ले सकते हैं। इसी प्रकार करके उनको वो अपना जो विग्रह श्याम सुंदर विग्रह उनको भेंट देते हैं। आप लोग देखोगे यहाँ पर जो पिक्चर में तो छोटे विग्रह है वो राधा श्याम सुंदर जी का विग्रह है जो स्वयं श्रीमती राधा रानी के हस्तों से उनको अर्पित किया गया था, और जो बड़ा विग्रह है वह बलदेव विद्याभूषण के द्वारा भेंट किया गया था, उन्होंने स्वयं अपना हाथों से बना करके वो पूजा किए थे। यहाँ पर दो सेट के विग्रह है, एक छोटा विग्रह है छोटा राधा रानी और कृष्ण, और बड़े राधा रानी और कृष्ण, एक बलदेव विद्याभूषण के द्वारा पूजित हुए थे और जो छोटा श्रीमती राधा रानी के द्वारा दिया गया था और श्यामानंद पंडित पूजा करते थे। और तुरंत वहां पर फिर श्रीमती राधा रानी उनको नाम देते हैं कि आपका नाम आज से श्यामानंद। श्यामानंद का मतलब क्या होता है, जो श्याम को आनंद देने वाले हैं, जो कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। इसका दो मीनिंग है, श्याम श्याम आनंद और श्यामा आनंद, दो मतलब होते हैं। जो श्यामानंद का मतलब कि राधा रानी और श्यामानंद का मतलब कृष्ण भी है, तो दोनों, तो उनका नामकरण होता है कि श्यामानंद। तो फिर जैसे उनका नामकरण होता है तुरंत बोलते हैं कि आप अभी भौतिक जगत पर चले जाओ, अपना जो कर्तव्य दिया गया आपको प्रचार कार्य के लिए आप प्रचार कार्य कीजिए। तो फिर श्यामानंद पंडित फिर अपने गुरु के आश्रम में शिव जीव गोस्वामी के पास आ जाते हैं। अगले दिन जीव गोस्वामी जैसे ही श्यामानंद को दर्शन करते हैं उनका तिलक चेंज, नाम भी चेंज हो गया, तो भी आश्चर्य हो गया, अरे ये कैसे सब हो गया। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि नाम तो ठीक है बाद में हो जाएगा, कभी कभी चेंज हो जाते हैं, किसी किसी का दो तीन नाम हो जाएगा, लेकिन तिलक चेंज हो गया। तिलक चेंज होना मतलब अपना संप्रदाय का पूरा नाम निशान चला गया, जो चैतन्य महाप्रभु जो परंपरा है ऐसे परंपरा में से तिलक किसी का नहीं है, और आप एक नया प्रकार तिलक करोगे को बोलेगा कि ये तो पूरा अपसंप्रदाय हो गया, तो कैसे होगा ये। तो उनको पूछने लगे कि कैसा क्या है, लेकिन वहां पर श्रीमती राधा रानी ललित देवी खास करके श्यामानंद पंडित को बताए थे कि देखिए जो भी यहाँ पर सब लीला हुआ है, आपका तिलक चेंज हुआ, आपका नाम भी चेंज हुआ, हम आपको विग्रह भी दिए, वो सब किसी दूसरे को इसे बताने का नहीं है। ये सब हमारे जो सीक्रेट पास टाइम से है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो जीव गोस्वामी बार बार पूछते रहे, बताइए क्या हुआ, तो श्यामानंद पंडित कुछ बता नहीं रहे। तो फिर उसी दिन रात को जब बार बार पूछने लगे, श्यामानंद कुछ बता नहीं पाए, तो श्यामानंद पंडित ने प्रार्थना करने लगे श्रीमती रानी, क्या करूं मैं, आप तो मना किए, दिल में कैसे बताऊं, नहीं तो मेरे को मेरे बारे में उनका गलत फहमी हो रहा है, तो कुछ तो कर कीजिए। तो उसी दिन रात को ललिता देवी ने सपने में जीव गोस्वामी बताया कि ये सब लीला हमने किया है, वो यहाँ पर आए थे, उनको हम बुलाए थे, ये करके उनका नाम भी चेंज किया, उनको विग्रह भी दिया, सब कुछ हमारे साथ हुआ, लेकिन आप ये चीज और किसी दूसरे को मत बताइए, क्यों आप उनका गुरु है इसलिए हम बता दिए। ये तो ठीक है, तो जीव गोस्वामी समझ गए, जीव गोस्वामी जैसे समझ गए ये सब हुआ है, तो तुरंत जीव श्यामानंद पंडित को आकर के आलिंगन करते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे प्रति अपराध कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए, आप तो श्रीमती राधारानी का स्पेशली कृपा प्राप्त हो गए। तो ऐसे बहुत उनका गुणगान करने लगे। धीरे 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 कुछ समय के बाद जब उनके गुरु कौन है, हृदय चैतन्य को जैसे पता चला कि इनका रीइनिशिएशन भी हो गया, दूसरा नामकरण भी हो गया और उनका तिलक भी चेंज करवा दिए, तो उनको तुरंत जीव गोस्वामी के ऊपर शक आया कि अरे ये कैसे, मैं तो उनको शिक्षा के लिए भेजा था, उन्होंने तो पूरा दीक्षा दे दिया, उनको दूसरा दीक्षा दे दिया, मैं तो यहां पर ऑलरेडी उनको दीक्षा भी दिया था, दीक्षा भी दे दिए और तिलक भी चेंज कर दिया, ये तो अपसंप्रदाय चालू कर दिया फिर उन्होंने। तो तुरंत ये वार्ता सुन करके उनको सहन नहीं हो पाया, तुरंत अपने शिष्यों को लेकर के बंगाल से पूरा आगे कहां पर वृंदावन, और तुरंत जीव गोस्वामी से भेंट करते हैं। और रात में उस दिन तो सारे वृंदावन में जितना वैष्णव थे, सीनियर वैष्णव जो भी सब थे, सबको इकट्ठा करके एक ये क्या बोलते हैं इष्ट गोष्ठी का आह्वान कर दिए कि आ जाओ इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, कैसे क्यों हो गया, ये तो अपना संप्रदाय के पूरा विरुद्ध है, तिलक चेंज हो गया और ये गुरु रहते हुए भी उसका दूसरा नामकरण भी हो गया, ऐसे होता नहीं कभी, ठीक है गुरु कभी पथभ्रष्ट हो गया, कभी गिर गया उसका फलदान हुआ उसका, और कभी हम दूसरा इनिशन करते हैं, अरे गुरु उसका जीवित है फिर आप उसको दूरी इनिशन कैसे कर सकते हैं। तो तुरंत सब उसका डिस्कशन हुई, तो उसी में जीव गोस्वामी कुछ बोल नहीं पड़ते, क्या करे, अभी राधारानी का स्पेशल आदेश है कि नहीं बोलना है, तो क्या किया जाए, तो धर्म द्वंद्व में पड़ गए। लेकिन आखिर इनको फिर उसी दिन जस्ट मीटिंग शुरुआत होने से पहले श्रीमती राधारानी बोले कि आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, अब हृदय चैतन्य को खाली थोड़ा उनके कान में बोल दीजिए, ये सब राधारानी कृपा है, ये सब अलौकिक है, आप इसको नहीं समझ सकते हैं, खाली उनको बता दीजिए। तो तुरंत जब मीटिंग हुआ तो बोले कि आप बताइए उनका तिलक कैसे चेंज हुआ, तो बोले कि मैंने तो बोला नहीं तिलक चेंज करने के लिए, अपने आप हो गया, ये अलौकिक है, स्पेशल राधारानी की कृपा है, बोले राधारानी कृपा है तो क्या उन्होंने आकर के उनका तिलक चेंज कर दिए, बोले कि हाँ हो सकता है, बोले कि प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है, आप तिलक अगर सोचते कि लौकिक है, मतलब कि किसी ने ऐसा अपने आप बनाया कि लिखा है इसको, कोई इसको ये पेंटिंग किया है, जाकर मिटा करके देखो, और मिट गया तो समझो कि साधारण है, और नहीं मिटा तो अलौकिक हो ना, और कोई हमारा शरीर से कोई चीज हमारा परमानेंट दाग के रूप में रह गया तो अलौकिक हो सकता है। तो उनको फिर उनका शिष्य लोगों ने जाकर बहुत प्रयास किया उसको मिटाने के लिए, तिलक को मिटने रहे, जितना उसको क्या बोलते इसको जो कुछ भी लगे ला करके उसको तेल ला करके किरोसिन डाल के सब पूरा मिटाने की कोशिश कर रहे थे, शायद उनको लगा कि कुछ परमानेंट मार्कर जैसा कोई पेंट लगा दिया होगा, मिटाने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, हो ही नहीं रहा है। तो जीव गोस्वामी तो शास्त्रों में पूरा निपुण है, तो शास्त्रों आर्गूमेंट दे सकते हैं, उनको बोले स्थापित किया, बोला देखो उनको तिलक मिटाओ, नहीं मिटा ना तो अलौकिक है। तो फिर लेकिन थोड़ा उनको हृदय तो थोड़ा लज्जित आने लगा, बोला कि ऐसा कैसा है, ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, उनको मन में थोड़ा दुखी थे, वो संतुष्ट नहीं थे। लेकिन उसी दिन रात को श्रीमती राधारानी स्वयं हृदय तनु बोले कि उनकी तिलक जो है मैंने स्वयं करवाया अपने हस्तों से, अब अपने शिष्य को और जीव गोस्वामी को गलत मत समझिए, ये मेरा ही कृपा है। जो स्वयं राधा रानी हृदय चैतन्य को बताया, तो हृदय चैतन्य सुन करके खुश हुए, प्रसन्न हुए कि मेरा शिष्य श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई है। तो उन्होंने अपने शिष्य का आलिंगन किए और उनको गुणगान किए और श्रीमती राधा रानी के स्पेशल कृपा प्राप्त हुआ है। तब जा करके उन्हें उनका ये जो जो द्वंद्व था, धर्म द्वंद्व था, वो फिर हमेशा के लिए मिट गया। तभी से श्यामानंद पंडित का एक अलग परंपरा चालू होने लगा और उनका तिलक का नाम से श्यामानंद तिलक का संप्रदाय शुरू हुआ कि उसी संप्रदाय में कोई भी जुड़ेगा, उनसे कोई भी परंपरा मानने वाले कोई भी जुड़ेगा उसी प्रकार तिलक वो कर सकते, वो बना फैड है। कभी गलत नहीं समझेगा कि वो जो इस प्रकार वो तिलक करते हैं वो गलत है करके, अपना ही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का ही वो तिलक है, क्योंकि ये स्वयं श्रीमती राधा रानी का ही चरण कमल है। हम लोग जो चरण कमल बनाते हैं वो विष्णुपाद है, लेकिन श्रीमती राधा रानी का स्पेशली चरण स्पर्श का चरण कमल है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और श्यामानंद पंडित वो इतना केवल तो ना तो एक बड़ा भक्त थे, वो इतना सुगीत गा रहे थे, उनका कीर्तन का एक अलग स्टाइल था। उन्होंने रेचक नाम का एक सुर एक अलग से उन्होंने कंपोज किए थे, जो सुर से इतना आकर्षित हो जाते, इतना आकर्षित होते, कोई भी वो कीर्तन सुनेगा, कितना भी वो पाषाण भी हो, किसका हृदय इतना ही पाषाण हो, उनका कीर्तन सुन करके उसका मन भी हृदय पिघल जाएगा। इसी प्रकार से वो कीर्तन के श्यामानंद कीर्तन करके उड़ीसा में बहुत फेमस है, जहां पर उनकी टीम और कीर्तन कर रहे वो दूसरा टीम को जाएगा नहीं, कि उनका एक अलग प्रकार के धुन से गाएंगे तो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो उनकी कीर्तन के प्रभाव से उन्होंने सारे उड़ीसा बंगाल में पूरा प्रचार करने लगे। फिर बाद में धीरे धीरे एक्चुअली प्रचार करने के लिए गुरु की आज्ञा की आवश्यकता होती है, तो फिर वहां पर जीव गोस्वामी के अंडर जब उनका शिक्षा संपन्न होती है तो उसे जीव गोस्वामी तीनों को भेज देते हैं अलग अलग जगह पर, तीनों को एक साथ भेजते हैं, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी गांव में चले जाते हैं बंगाल में, और श्रीनिवास आचार्य क्योंकि उनका जो बुक्स वगैरह लेके आते हैं, सड़े गोस्वामी का जो बुक्स वगैरह लेके आते हैं वो रास्ते में चोरी हो जाते हैं, उसको ढूंढने के लिए फिर वहीं रुक जाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। और श्यामानंद पंडित सोचते हैं कि अभी मैं ये सब करने रखूंगा तो मैं अपना गुरु के पास जा नहीं पाऊंगा, लेट हो जाएगा, मेरा गुरु मेरा प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत फिर वहीं से श्रीनिवास आचार्य को वो संधान कर लेके छोड़ देते हैं, बोले कि मैं गुरु के पास जाके दर्शन करता हूँ। तो तुरंत फिर वो अंबिया कलना आ जाते हैं अपने गुरु के पास। वहाँ पर कुछ समय रहने के बाद फिर अपने गुरु हृदय चैतन्य उनको निर्देश कर आदेश देते हैं कि देखिए अभी श्रीमान महाप्रभु का जो प्रचार है उड़ीसा में धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, क्योंकि उनका जो जो क्या बोलते हैं इसको शिष्य है, उनका जो पार्षद है वो धीरे धीरे अप्रकट हो रहे हैं। अभी फिलहाल उड़ीसा में कोई भी अभी उनके पार्षद नहीं है, तो इसलिए प्रचार बिल्कुल नहीं हो रहा है, आप इसी प्रचार कार्य को लीजिए, आप तुरंत यहाँ से उड़ीसा के लिए चले जाइए। तो फिर वहाँ से अंबिया कलना से फिर आ जाते हैं कहाँ पर उनका जो निजी गाँव है वहीं पर आते, अपने पिता माता से भेंट करते हैं, उनका पिता माता उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होते, फिर उनका शरीर छोड़ने के बाद देहांत होने के बाद फिर वो रेमुणा आते हैं, रेमुणा से अपना सेंटर बना करके पूरा वहाँ पर प्रचार करना शुरू करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे उनका बोला जाता है कि उन्होंने बहुत शिष्य ग्रहण किए थे श्यामानंद पंडित ने, लेकिन उनका एक प्रमुख शिष्य थे रसिकानंद आचार्य। रसिकानंद आचार्य जो कि महान शुद्ध भक्त थे, श्यामानंद पंडित जिस प्रकार से प्रचार कार्य कर रहे थे उनकी प्रचार से ना तो केवल मनुष्य पशु पक्षी भी वो भी पिघल रहे थे, उनसे दीक्षा के लिए लालायित होते थे, बहुत पशु पक्षी की वो भी उन्होंने दीक्षा दिए, पेड़ पौधा को भी दीक्षा दिए। इतना नहीं, पेड़ पौधा के अलावा सारे देवी देवता भी इनकी दीक्षा के लिए भी लालायित होते थे। फॉर एग्जाम्पल उसमें एक बुक में पढ़ रहा था मैं, वहां पर उड़ीसा में बहुत चलता है कि जो ग्राम्य देवी देवता होते हैं ना उनके पास बलि चढ़ाया जाता है, किसी जानवर को ये अपना क्या बोलते हैं इसको गाय भैंस जो गोट सीप वगैरह जो है वो बलि चढ़ाते हैं। तो जो बलि खाने वाला जो ग्राम्य देवी देवता है वो भी श्यामानंद पंडित का कीर्तन सुन करके उनका भी मतलब हृदय पिघलने लगा, बोले कि अरे इतना शुद्ध महान कीर्तन भक्त है, इतना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, चलो हम इनका भी शरणापन्न होकर इनसे भी दीक्षा लेंगे। तो स्वर्ग देवी देवता भी उनके पास आते थे दीक्षा लेने के लिए, उनका वर्णन है कोई के देवता आके उनसे भी दीक्षा लिया है। तो पेड़ पौधा पशु पक्षी और देवता सारे इनके शिष्यत्व ग्रहण कर रहे थे। तो एक बार झारखंड जंगल में जा रहे थे श्यामानंद पंडित, वहां पर बड़े बड़े शेर हिरण को भी उन्होंने दीक्षा दिया है। उनका जो शिष्य रसिकानंद आचार्य वो भी ऐसे है, इन्होंने जितना पशु पक्षी दीक्षा नहीं दिया है उनके शिष्य रसिकानंद आचार्य सबसे ज्यादा उनका शिष्य है। हाथी शेर बाघ ये सब है इनका, मनुष्य ज्यादा उनका सब शिष्य है, ऐसा है। तो इसी प्रकार से श्यामानंद पंडित अनेक अनेक शिष्य ग्रहण करके उन्होंने कीर्तन प्रचार किए हैं, फिर बाद में रेमणा में रह करके उन्होंने अपना यह लीला त्याग किए थे। तो हमने श्यामानंद पंडित का ये जो जीवन चरित्र है, जो अलौकिक लीला है, क्योंकि भक्तों का जब हम इस प्रकार से लीला श्रवण करते हैं तो हमारा क्या फायदा होता है कि हमारा जो मन बुद्धि और शरीर एक साथ जब भगवान की भक्तों की हम लीला श्रवण करते हैं उसमें पूरा हम उसी स्टेज पर चले जाते हैं, दिव्य स्टेज पर हम चले जाते हैं, जिसको जैसे हमको भक्ति करना बड़ा आसान है। हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए ये केवल ना अलौकिक लीला है लेकिन ऐसा कोई संभव नहीं है, ये भी साधारण जीव को किस बद्ध जीव को किस प्रकार से भक्ति करना है अपने जीवन में इस संसार में रहते हुए भी वो हमको ही शिक्षा देके गए। केवल गृह ठाको बने ठाको सदा हरि बोले डाको, केवल कीर्तन करने से वही राधा रानी का भाव वही कृष्ण का भक्ति सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्यामानंद पंडित का है। टाइम कितना हो गया? 8:30। तो और जस्ट 5 मिनट में अभी हम राधा कुंड के अपीयरेंस करें बताएंगे। आज राधा कुंड का अपीयरेंस डे है, आविर्भाव दिवस है। आप सोचोगे कि दो दो बार क्यों आते हैं ऐसे, हमने पिछले कार्तिक महीने में बहुलाष्टम के दिन इसका भी हम आविर्भाव तिथि बनाए थे, तो उसका आविर्भाव तिथि आज भी है। एक्चुअली राधा कुंड के जो आविर्भाव तिथि है, बहुलाष्टम के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए थे, पहली बार जब वृंदावन में आए थे, उन्होंने कार्तिक महीने के दिन बहुलाष्टम के दिन उन्होंने जो राधा कुंड और श्याम कुंड जो एक खेत के अंदर दो पानी की जैसे थोड़ा क्या बोलते हैं जलाशय जैसे छोटा छोटा टापू जैसा लग रहा था उसी प्रकार से प्रकट थे, लेकिन उसको आविष्कार किए थे, उसको भी हम राधा कुंड के अपीयरेंस डे मानते हैं। और चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन एक्चुअली राधा रानी के हस्तों के द्वारा ये कुंड बनाया गया था। ये 5000 वर्ष पूर्व जो स्वयं श्रीमती राधा रानी के द्वारा कुंड की प्रकट हुई थी वो राधा कुंड का अपीयरेंस डे बोलते हैं। और जो बहुलाष्टमी के दिन जो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उनके जो आविष्कार हुई थी राधा कुंड की, ये उसको भी आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। तो आज राधाष्टमी राधा कुंड के जो आविर्भाव दिवस के ऊपर, तो उसमें स्नान की विधि है, जिन लोग उसमें स्नान करते हैं तो उनको तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त होती है। आप लोग राधा कुंड का पास्ट आप लोग सुनते जाना मतलब कि अब जाने होंगे इसलिए नहीं बता रहा हूँ, सुनना चाहते हैं कि अभी टाइम तो ज़्यादा हो गया। तो ठीक है शॉर्टली आपको बताया तो हमें राधा कृष्ण का इधर राधा कुंड के अपीयरेंस के बारे में, राधा रानी के द्वारा कैसे प्रकट हुई राधा कुंड। एक बार जब कृष्ण के द्वारा भेजा गया राक्षस अरिष्टासुर, जब उन्होंने वृंदावन में आए तो उन्होंने बहुत वृंदावनवासी को दुख पहुँचाया, उन्होंने बहुत समस्या उत्पन्न किया, जिसके दौरान पूरा वृंदावन जो है पूरा थलचल हो गए और सारे ब्रजवासी गोप गोपी पूरा मतलब कि इधर उधर भागने लगे। तो तुरंत कृष्ण समझ गए कि ये जो है एक राक्षस है, भले से बैल के रूप में आए हैं लेकिन एक राक्षस है, उसको तुरंत वध करना चाहिए। तो तुरंत फिर उन्होंने अरिष्टासुर को वहीं पर वध करते हैं। और श्रीमती राधा रानी उनका जो ग्रुप है वहाँ पर खेलते रहते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए आपने एक बैल को वध किया है इसलिए आपको ब्रह्महत्या के पाप हुई है, उसके लिए पश्चाताप करने के लिए आप क्या करो कि सारे जो तीर्थ नदियां हैं वहां पर जाकर आप स्नान करके आइए, आपके जो पाप है धुल जाएगा। तो कृष्ण बोलते हैं अगर मैं सारे तीर्थ नदियां स्नान करने जाऊं तो बहुत समय लग जाएंगे, तो मेरा लीला खत्म हो जाएगा अभी यहां पर। मैं तो यहां पर लीला के वृंदावन से आप लोगों को आनंद प्रदान के लिए यहां पर आया हूं, तो लीला कैसे होगी। तो तुरंत उन्होंने सारे तीर्थ नदियां को स्मरण करते हैं, उन्होंने अपने पाओ से अपने पैरों से कृष्ण एक कुंड बनाते और सारे तीर्थ नदियों को आह्वान करके बोलते कि आप अपना अपना जल के यहाँ पर डाल दीजिए। तो तुरंत सारे जो तीर्थ नदी है गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सप्त नदी वहाँ पर अपना पानी को सिंचन करते हैं, तो वहाँ पर एक कुंड बनता है, उसका श्याम कुंड है। तो फिर कृष्णा भी राधारण को बोलते हैं कि देखो आपने के राक्षस का सपोर्ट लिया है, वो तो हे बैल के रूप में है लेकिन वो राक्षस है, आप उसके सपोर्ट लिया इसलिए आपको भी ब्रह्महत्या दोष पाप हुई है, तो आप भी जाकर के स्नान करके आओ। तो फिर राधारानी बोलते हैं कि हमको जाने की आवश्यकता है, फिर हम अपना एक कुंड बना के यहाँ पर स्नान करेंगे। तो कृष्ण बोलते हैं कि आपको दूसरा कुंड बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कुंड बनाया आप उसमें स्नान कर लीजिए। बोले नहीं नहीं आपने जो स्नान किया है उसके सारे पाप जो इस कुंड में गया तो हमको सारे पाप उल्टा आ जाएगा, एक तो पाप है फिर दूसरे पाप आ जाएगा, तो हम उसमें स्नान नहीं करेंगे अपना कुंड बनाएंगे। तो उन्होंने जब दूसरा कुंड बनाने लगे श्रीमती राधारानी अपने सखियों के साथ अपने कंगन से उन्होंने एक दूसरा कुंड बनाया। तो फिर जब तीर्थ नदिया को आह्वान किए तो कोई आए नहीं, फिर क्योंकि कृष्ण ने उनको मना करके कहते कोई जाने का नहीं, तो कोई आए नहीं। फिर तो राधा रानी क्या किया, मानसी गंगा जो यहाँ पर नजदीक है सारे सखियाँ को बोले कि आप जा करके मटका भर के पानी ला करके अपने इस कुंड को भरिए। तो सब गोपियाँ अपने कंधे पर मटका ला करके वहाँ पर पानी भरने लगे। उनका इतना मेहनत देख करके कृष्ण को सहन नहीं हुआ, बोले कि मैं आपको कुछ मदद करना चाहता हूँ। तो राधारण मना कर रहे थे लेकिन बोले कि ठीक है कीजिए। तो सारे तीर्थ नदिया को निर्देश दे दे आदेश दे दे कि आप जाओ आप अपना कुंड उनका कुंड भी भर दीजिए। तो तुरंत राधा कुंड में फिर श्याम कुंड से तुरंत नदी क्या करते हैं छलांग मार कर राधा कुंड को भर देते हैं। तो राधा कुंड में फिर पूरा पानी आ जाते हैं, तो सारे सखी जो उसमें स्नान करते हैं, इसी प्रकार की लीला होती है। तो उसी दिन कृष्ण डिक्लेयर करते हैं जिस प्रकार से आप मुझे प्रिय हो तो उसी प्रकार से आपकी जो बनाया गया जो कुंड है वो सबसे प्रिय है मुझे। जो जो व्यक्ति इस कुंड में स्नान करेगा वो तुरंत आपकी कृपा प्राप्त करके वो कृष्ण भक्ति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका एक माध्यम है कि हम राधा कुंड में स्नान करेंगे तो राधारानी कृपा प्राप्त होगी, तब जाकर हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती राधारानी की जय, श्री राधा कुंड की जय, श्री श्यामानंद पंडित की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कीर्तन कौन करेगा? अरे नहीं रहेगा ना कोई, आप गा सकते शुरू याद है
संसार दावा ललीढ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना